स्वयं वावात् मन्यवधीयमानः यथा मिलः स्थावरजङ्गमानाम् आत्मस्वरूपेण निविष्ट ईशे एवं परो भगवान् वासुदेवः क्षेत्रज्ञ आत्मे दनु अनुप्रविष्टः
पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के हैं, जीवात्मा तथा श्री भगवान। जीवात्मा का वर्णन पीछे किया जा चुका है, यहां श्री भगवान की विवेचना की जा रही है। श्री भगवान सृष्टि का सर्वव्यापक कारण है, वह अपने में पूर्ण है और अन्यों पर आश्रित नहीं है। वह सुनकर तथा प्रत्यक्ष अनुभव या दर्शन से देखा जाता है। वह आत्म तेजस्वी है और उसे जन्म मृत्यु जरा अथवा व्याधि कुछ भी नहीं सताते। वह ब्रह्म आदि समस्त देवताओं का नियंता है, उसका नाम नारायण है और वह संसार के प्रलय के पश्चात समस्त जीवात्माओं का आश्रय है। वह परम ऐश्वर्यवान है और समस्त भौतिक वस्तुओं का आश्रय है, अतः वह वासुदेव श्री भगवान के नाम से जाना जाता है। अपनी शक्ति से ही वह समस्त जीवात्माओं के हृदयों में स्थित है, जिस प्रकार समस्त चराचर प्राणियों में वायु या जीवन शक्ति रहती है, इस प्रकार वह शरीर को वश में रखता है। अपने अंश रूप में श्री भगवान समस्त देहों में प्रवेश करके उनको नियंत्रित करता है। तात्पर्य शलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः कृष्ण। श्रीमद् भागवत के पांचवें स्कंद के ग्यारहवें अध्याय में प्रसंग ये चल रहा है कि जड़ भरत, जो कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं, वो महाराज रहुगण को उपदेश दे रहे हैं। आपको याद है कि महाराज रहुगण पहले जड़ भरत को समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, सोचा कि जड़ भरत एक मूर्ख व्यक्ति है, पागल व्यक्ति है, मंद बुद्धि वाला व्यक्ति है। परंतु जब जड़ भरत का उन्होंने अपमान किया और उस समय जड़ भरत ने दो बातें बताई महाराज रहुगण को, तब उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें पता चला कि ये व्यक्ति वो नहीं है जो कि मैं समझ रहा हूं, ये तो एक महान संत है। बहुत पश्चाताप हुआ महाराज रहुगण को, तुरंत अपने पालकी से उतर के साक्षात दंडवत प्रणाम किया जड़ भरत को, क्षमा याचना की और कई महत्वपूर्ण प्रश्न आध्यात्मिक जीवन के बारे में उन्होंने किए। महाराज रहुगुण के प्रश्नों के उत्तर में जड़ भरत ये उपदेश दे रहे हैं। इस श्लोक में वो भगवान का परिचय दे रहे हैं कि भगवान कौन है। सबसे पहले यहां पर शब्द प्रयोग इस्तेमाल किया गया है क्षेत्रज्ञ। कल भी भक्त रूप प्रभु हमें सुना रहे थे कि कैसे दो तरह के क्षेत्रज्ञ होते हैं, और इसी बात को यह आगे बढ़ाया जा रहा है। भगवद गीता के 14वें अध्याय में ही शुरुआत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, प्रकृतम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एवच एतत् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम् च केशव। हे केशव, हे कृष्ण, मैं जानना चाहता हूँ, वेद तुम इच्छामि, मैं जानना चाहता हूँ ये छह चीजों के बारे में। कौन से हैं ये छह चीज? क्षेत्रम, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र को जानने वाला, ज्ञानम और ज्ञेयम, ज्ञानम मतलब ज्ञान और ज्ञेयम मतलब ज्ञान का विषय। तो इन छह चीजों के बारे में हे केशव, हे कृष्ण, मैं जानना चाहता हूं। और फिर तुरंत भगवान जवाब देते हैं। श्री भगवान उवाच, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। ये क्षेत्र शब्द जो है हे अर्जुन, ये शरीर है। इदम शरीरम, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं। तो इस क्षेत्र को जानने वाला जो है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो क्षेत्र को कौन जानता है? आत्मा। जिस तरह से एक व्यक्ति अपने व्यवसाय में रहता है, हो सकता है उसको कोई कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं, दुकान है, और वहां वो मालिक है, और उस जगह उस कारखाने में या उस दुकान में या उस दफ्तर में जो भी कुछ चल रहा है उसे मालूम है, वो वहां का स्वामी है, मालिक है। तो उसका जो दुकान कारखाना वगैरह है वो उसके लिए क्षेत्र है। उस क्षेत्र का भोग करने वाला, उस क्षेत्र को जानने वाला वो क्षेत्रज्ञ है। तो इस संसार में हम सब भोग करने के लिए आए हैं, भगवान को भूल कर आए हैं। वैसे तो हमारा स्थान है भगवान की सेवा करना, लेकिन भगवान की सेवा का मौका छोड़कर हम यहां भोग करने आए हैं। तो भोग करने की प्रवृत्ति को पूर्ण करने के लिए भगवान ने हमें भौतिक शरीर दिया, क्षेत्र। चलो भोग करो, जितना चाहे उतना भोग करो, सुखी नहीं होगे तुम, लेकिन ठीक है, तुम्हारी इच्छा है कि तुम मुझसे स्वतंत्र होकर भोग करना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए मैंने एक तुम्हारे इच्छाओं के अनुसार एक उपयुक्त शरीर दिया है, तो ले लो। ये मनुष्य शरीर है, कुत्ते का शरीर है, पक्षी का शरीर है, कीड़े का शरीर है, देवता का शरीर है। अपने अपने इच्छाओं के अनुसार हमें एक उपयुक्त भौतिक शरीर मिलता है भोग के लिए। इस शरीर के माध्यम से आत्मा भोग कर सकता है इस प्रकृति का। तो शरीर और प्रकृति ऐसे बद्ध जीव के लिए, अज्ञानी जीव के लिए भोग्य वस्तु है, वास्तव में भोग्य नहीं है। लेकिन जीव सोचता है कि मैं भोगता हूं, मेरा अधिकार है इन सब चीजों के ऊपर भोग करने के लिए, इसलिए वो भोग करने का प्रयास करता है। इस तरह से ये शरीर मिल जाता है उसे, और शरीर का भोग करना ही वो जीवन का लक्ष्य मानता है। इस तरह से इस आत्मा को ये क्षेत्र मिलता है, चलो जाओ भोग करो। कभी कभी एक छोटा बच्चा अपने पिताजी से कहता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। छोटा बच्चा है, 3 साल का 4 साल का, और पिताजी कहते हैं बहुत अच्छा डॉक्टर बनो, लेकिन उसके लिए समय है, पहले पढ़ाई करो, स्कूल समाप्त करो, फिर मेडिकल कॉलेज में जाओ, फिर मेडिकल कॉलेज से पास हो जाओगे, फिर डॉक्टर बन पाओगे। लेकिन बच्चा कहता है नहीं, मुझे अभी डॉक्टर होना है। तो पिताजी समझाते, अरे बाबा अभी कैसे डॉक्टर हो जाओगे, अभी बहुत टाइम है उसके लिए। कहता नहीं, मुझे अभी होना है डॉक्टर। तो फिर पिताजी क्या करते हैं, ठीक है बाजार में जाते हैं, दुकान से कोई प्लास्टिक का जो नकली स्टेथोस्कोप होता है, वो जो उनका यंत्र होता है, वो लाके दे देते हैं, और थोड़े प्लास्टिक के पात्र वगैरह लाते हैं, कहते हैं गुड़िया देते हैं, चलो ये तुम्हारे पेशेंट, तुम्हारे मरीज, चलो उनको दवाई दे दो। बच्चा खुश हो जाता है, वो कान में लगाता है, वो कहता है चलो तुम्हें बुखार हुआ, तुम ये गोली ले लो, खेलता है, थोड़ी देर मनोरंजन हो जाता है उसका, खुश हो जाता है। लेकिन कब तक खुश हो जाएगा? थोड़े देर बाद, थोड़े दिनों के बाद उब जाता है, सर ये तो खिलौना है, इसमें तो कोई मजा नहीं है, फेंक देता है। ठीक उसी तरह से हम उस चीज के लिए मांग रहे हैं भगवान से जो कि संभव नहीं है। वो क्या है? भगवान के से अलग होकर भोग करके सुखी होना ये असंभव है, लेकिन फिर भी हम भगवान से यही चाहते हैं। कि हम आपकी सेवा नहीं करना चाहते, आपके शरण में नहीं रहना चाहते, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम भोगी होकर सुखी रहना चाहते हैं। नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं। अनादिकाल से भगवान हर जीव की इच्छा की पूर्ति करते आए हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, ये जीव मेरा अंश है, मेरा सेवक है, लेकिन अपने आप के अंशत्व को भूलकर वो पूर्ण की तरह मेरी ही तरह भोग करना चाहता है, जिद्दी है, क्या करें। तो ठीक है, उसको उसके लिए ऐसा क्षेत्र बनाओ, ऐसा एक स्वप्न का अवस्था, ऐसा खिलौना उसे दे दो जिसका वो भोग करने का प्रयास करेगा। भोग करेगा करेगा, एक जीव एक शरीर प्राप्त करेगा, फिर उसको त्याग कर दूसरा शरीर मिलेगा, ऐसे करोड़ों करोड़ों शरीर प्राप्त करते करते वो भोग करते करते एक दिन उसके होश ठिकाने आ जाएंगे और वो पूछेगा अरे ये सब क्या है, इसमें कोई आनंद नहीं है, इसमें कोई रस नहीं है, उब जाएगा और फिर इस भोग वृत्ति को त्याग कर भगवान के शरण में आएगा। तो इसका मतलब है कि यह जीव जब संसार में आता है तो केवल भोग करके वो आनंद की प्राप्ति कभी नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी जब तक वो अज्ञानी है उसका क्षेत्र है ये, वो मालिक है इसका, सोचता है ये मेरा है, मेरा धन है, मेरा शरीर, मेरा कुटुंब, मेरा घर, मेरी गाड़ी, सब मेरा है, तो मेरे लिए भोग्य वस्तु है। तो चींटी से लेकर ब्रह्मदेव तक सब इस भ्रम में है, इसलिए सभी परेशान है और इसलिए सभी को जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता है। पुरुषः प्रकृति स्तो ही भुंक्ते प्रकृति जैर्कुरेन कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। पुरुषः आत्मा जो होता है कभी उसे भी पुरुष कहा जाता है। पुरुष मतलब भोक्ता, प्रकृति मतलब भोग्य, जिसका भोग किया जाता है। प्रकृति स्त्रीलिंग है, पुरुष पुलिंग है, तो आत्मा वैसे प्रकृति है, स्त्रीलिंग है, भगवान द्वारा भोग्य है, लेकिन फिर भी जब ये भोग्य वस्तु अपने आप को भोक्ता समझता है तब गड़बड़ हो जाता है, मामला सब चौपट हो जाता है। इसलिए कभी कभी शास्त्रों में हालांकि भगवान को पुरुष कहा जाता है लेकिन जीवात्मा को भी कभी कभी पुरुष कह के संबोधित किया जाता है, क्योंकि ये झूठी भोग की प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है। पुरुषः प्रकृति स्थो ही, ये झूठा पुरुष जो है, नकली पुरुष, प्रकृति स्थो ही, इस भौतिक प्रकृति में आके अपने आप को स्थित हो जा करा देता है। भुंगते प्रकृति जैर्गुणे, भुंगते मतलब भोग करने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, सद असद योनि जन्मसु, फिर उसे नाना प्रकार के योनियों में जन्म लेना पड़ता है, भ्रमण करना पड़ता है, कभी इस योनि में कभी उस योनि में। इस तरह से भगवान ने सारे आत्माओं को जो भी इस भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में है उनको क्षेत्र दे दिया है, अपने अपने कर्मों के अनुसार हरेक जीव को क्षेत्र मिल जाता है, चलो तुम खेलो। जैसे बच्चों को एक मैदान दिया जाता है, प्लेग्राउंड, उद्यान, जहां जाकर नाना प्रकार के खिलौने होते हैं, वो सीढ़ी से उतरते हैं, नीचे जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उनके लिए क्षेत्र है, जाके भोग करते हैं वहां पर। ऐसे ही भगवान ने हमें ये क्षेत्र दिया है, चलो भोग करो खेलो। लेकिन आप जानते हैं कि हम हर रोज भी जाएंगे बगीचे में खेलने के लिए, लेकिन पिताजी हमको वापस लेकर आएंगे, चलो टाइम हो गया, अभी होमवर्क करना है, कल स्कूल जाना है, रात हो गई, बच्चा नहीं जाना चाहता, नहीं चलो जाना पड़ता है। कभी माता पिता बच्चों को समुद्र के तट पे ले जाते हैं, वहां बालू के रेती के सब महल बनाते हैं और इतना मग्न हो जाते हैं, सोचते ये मेरा है, देखो कितना सुंदर घर मैंने बनाया है, और इसे ये कमरे हैं, ये दरवाजा ऐसे है, यहां मेरी गाड़ी होंगी, यहां ये होगा। फिर पानी की लहरें आती हैं, सब उड़ा के ले जाती है, और पिताजी कहते हैं चलो अभी घर जाने का समय हो गया। बच्चा कहता है नहीं नहीं मेरा महल, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, अरे कुछ नहीं, ये सब झूठा है, चलो चलो। उसी तरह से हम भी इस भौतिक सागर भव सागर में आके हमारे सब महल बना रहे हैं, हवा महल, आज मेरा इतना है, कल वो होगा, फिर मेरा ऐसा होगा, फिर मैं करोड़पति बन जाऊंगा, फिर मेरे पास ये होगा, मैं इतना सुखी हो जाऊंगा, और फिर अंत में भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं, मृत्यु सर्व हरस चाहम, मृत्यु के रूप में आके भगवान हमारा सब कुछ हरण कर लेते हैं। हम बोलते हैं नहीं नहीं भगवान हमको 2 घंटे और दीजिए, 2 साल और दीजिए, हमको 1 फैक्ट्री और बनाना है, हमको और थोड़े काम है, ये करना है वो करना है, लेकिन काल हमारी बातें नहीं सुनने वाले हैं। चलो टाइम हो गया, चलना ही होगा तुम्हें, निकलो। इस तरह से ये क्षेत्र में रहकर क्षेत्रज्ञ जो आत्मा है वो भोग करता है, भोग करता है, दुखी होता है, फिर से भोग करता है, लेकिन उसका भाग्य का उदय अगर हो जाता है, वो भक्तों का संग उसे अगर मिल जाता है, तो फिर वो इस भयानक अवस्था से मुक्त होकर भगवान के पास फिर से जा सकता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, कि ये जो शरीर है हे अर्जुन इसको क्षेत्र कहते हैं, और उसके अंदर जो निवास करता है क्षेत्री या आत्मा वो क्षेत्रज्ञ है। देह देही, भगवत गीता में भी देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जना, तो देह और देही, देह में निवास करने वाला देही, उसी तरह से क्षेत्र में निवास करने वाला क्षेत्री, तो आत्मा क्षेत्री है। और क्षेत्री अपने क्षेत्र को जानता है, जैसे आप किसी दुकानदार को पूछेंगे, किसी व्यवसाय व्यापारी को पूछेंगे, किसी गृहिणी को पूछेंगे कि उनके घर में क्या है, दुकान में क्या है, उनको मालूम होता है, तो इसलिए इसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। लेकिन आगे चल के भगवान श्री कृष्ण और एक बात बताते हैं भगवद गीता में, वो कहते हैं कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, कि हे अर्जुन जो क्षेत्री है, जो शरीर में स्थित आत्मा है, वो तो क्षेत्र को शरीर को जानता है, इसलिए उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, लेकिन और एक क्षेत्रज्ञ है और वो मैं हूं, मैं भी हर एक देह में स्थित होता हूं। क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि, मैं भी सब क्षेत्रों को जानता हूं, सर्वेषु सारे क्षेत्रों को मैं जानता हूं। जो जीवात्मा है वो तो अपने क्षेत्र को जानता है, लेकिन मैं सारे क्षेत्रों को जानता हूं, इसलिए मैं सर्वज्ञ हूं, मुझे सब कुछ मालूम है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं तो सब कुछ जानता हूं हे अर्जुन, अतीतानि जो हो गया भूतकाल में, वर्तमानानि जो अब चल रहा है, भविष्याणि जो होने वाला है भविष्य में, मैं सब कुछ जानता हूं। वेद वेद अहम माम तु वेद न कश्चन, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है अर्जुन, तो ये है परम क्षेत्रज्ञ भगवान। भगवान की परिभाषा कई तरह से की जा सकती है, उनमें भगवान इनमें से भगवान का एक गुण है सर्वज्ञ, वो सब कुछ जानते हैं, भूतकाल जानते हैं, भविष्य काल जानते हैं, वर्तमान काल जानते हैं, वो सबको जानते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से कोई नहीं जानता है। तो भगवान कहते हैं कि हरेक जीव अपने अपने शरीर को जानता है, लेकिन मैं सारे शरीरों को जानता हूं। जैसे हमारे शरीर में कोई कष्ट हो रहा है, हमारा पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, हम जानते हैं, लेकिन आप नहीं जान पाएंगे कि हमारे शरीर में मन में क्या वेदना चल रही है। उसी तरह से आपका सुख दुख मैं नहीं जान पाऊंगा जब तक कि आप उसको व्यक्त नहीं करेंगे, चाहे अपने शरीर से या अपने वचनों से, जब तक आप बताएंगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन भगवान सारे क्षेत्रों को जानते हैं, वो आपके शरीर में क्या हो रहा है वो भी जानते हैं, आपका पेट दर्द कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और मेरे पेट की अवस्था क्या है वो भी जानते हैं, यहां तक कि हर एक प्राणी के अंदर क्या चल रहा है, उसके शरीर में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो हर एक प्राणी के हृदय में स्थित है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, हर एक प्राणी के हृदय में विराजमान है भगवान परमात्मा के रूप में, और वहां पर रह के सबको ज्ञान देते हैं, स्मृति देते हैं और विस्मृति भी देते हैं। इसलिए भगवान 13वें अध्याय में गीता के बताते हैं परमात्मा इति चापयुक्तो, कि मुझे परमात्मा कहते हैं। क्यों? उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, क्योंकि मैं भी सर्वज्ञ हूँ, मैं भी एक क्षत्रज्ञ हूँ, मैं हरेक शरीर में निवास करता हूँ। उपद्रष्टा, मैं सब कुछ देखता हूँ, साक्षी हूँ मैं। जो भी कुछ चल रहा है, जो भी कर्म जीव कर रहा है, सबको मैं जानता हूँ, भर्ता भोक्ता महेश्वरः, मैं असली भोक्ता हूँ, और इसलिए मुझे परमात्मा कहते हैं। परम आत्मा, जो आत्मा है, जो क्षेत्रज्ञ है, उसका ज्ञान सीमित है, उसकी चेतना सीमित है, लेकिन जो भगवान है उनको परम आत्मा कहते हैं। परम चेतन है, परम क्षेत्रज्ञ है वो। इसलिए शुरुआत में ही इस श्लोक में बताया गया है कि दो तरह के क्षेत्रज्ञ है, एक तो है आत्मा, दूसरा परमात्मा। परमात्मा क्योंकि वो सर्वव्यापी है, सारे शरीरों में है, सारे लोकों में है, इसलिए वो सब कुछ जानते हैं। यहाँ पर भगवान के अलग अलग गुणों का वर्णन किया है जड़ भरत ने। उनमें से दो नाम महत्वपूर्ण हैं, नारायण और वासुदेव। भक्तों के समाज में ये काफी कॉमन नाम है, लेकिन नारायण शब्द का अर्थ क्या है, कोई बता सकते हैं? नारायण, नारायण शब्द का अर्थ क्या है? सब जीवात्माओं के आश्रय, बहुत अच्छा। नार, इसके नारायण शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ ये है, नार मतलब सारे समस्त जीव, अयन मतलब आश्रय, तो नारायण मतलब समस्त जीवों के आश्रय। अयन के और भी अर्थ हो सकते हैं, अयन का मतलब यह भी हो सकता है वृत्ति, प्रवृत्ति। तो हमारे अंदर जो भी वृत्ति है, प्रवृत्ति है, वो भगवान से आ रही है, इसलिए उनको नारायण भी कहा जाता है। नार मतलब समस्त जीव, अयन मतलब वृत्ति। जैसे हमारे अंदर चोरी करने की वृत्ति है ना? नहीं, हम आपको अपमान नहीं कर रहे हैं, हम सब, हमारे अंदर ही वृत्ति है। क्यों? थोड़ा बहुत हम चोरी करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ चोरी करेंगे। जो वास्तव में चोर कहे जाते हैं, वो तो किसी का सामान उठाकर ले जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, ताला तोड़कर जाते हैं, निकालते हैं। हम तो भगवान की संपत्ति का भोग कर रहे हैं, हम भी तो चोर हो गए कि नहीं? ये तो सब वस्तुएं हमारी नहीं है, हमने उनसे अनुमति नहीं ली है, हम आपकी वस्तु का भोग करें क्या? थैंक यू, प्लीज, सॉरी कुछ नहीं बोलते हैं, उठा के भोग कर लेते हैं, तो हम भी चोर हैं। ये वृत्ति कहां से आई चोरी करने की? भगवान से आई। वृंदावन में वो भी माखन चोरी करते हैं, वो भी गोपियों के वस्त्रों की चोरी करते हैं, तो वृत्ति उनमें है, इसलिए हमारे अंदर आ जाती है। उसी तरह से झगड़ा करने की वृत्ति हमारे अंदर है, सबके अंदर है। आजकल कलयुग में तो ये वृत्ति बहुत ज्यादा विद्यमान है, तो ये वृत्ति भी भगवान के अंदर है। भगवान जब अपने गोलोक वृंदावन में रहते हैं, वहां ग्वाल बालों के संग कुश्ती करते हैं, लेकिन जब और उनको युद्ध करने की इच्छा होती है तो गोलोक वृंदावन में नहीं कर सकते, वैकुंठ में नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे उनको अगर वीर रस का आस्वादन लेना है तो भगवान के धाम में कैसे ले पाएंगे? वहां तो सब भक्त हैं उनके, इसलिए उनको यहां आना पड़ता है, और यहां के जो असुर होते हैं उनके साथ युद्ध करना पड़ता है। जब उनका वध करते हैं तो कृष्ण भगवान को आनंद आता है। तो ये युद्ध या झगड़ा करने की जो प्रवृत्ति है वो भी हमारे अंदर है। प्रेम करने की प्रवृत्ति वो भगवान के अंदर है, इसलिए हमारे अंदर है। तो जो भी वृत्तियां हम प्राणियों में देखते हैं, वो प्राणियों में इसलिए है कि ये सारे वृत्तियां मूल रूप से भगवान में है। अगर आपको भगवान को पहचानना है, जानना है, तो एक जीव का अभ्यास कीजिए, जीव की परीक्षा कीजिए। जीव के अंदर क्या गुण है, वो भी वही गुण भगवान में होंगे, लेकिन असीम मात्रा में। जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण दिया करते थे कि कभी कभी जब आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और आजकल तो डॉक्टर के पास जाएंगे सबसे पहले क्या कहते हैं, इतना खून निकालते हैं सबसे पहले, वो खून की परीक्षा करो, ये परीक्षा करो। तो केवल इतना सा खून निकालकर वो जान सकते हैं कि आपके शरीर में खून में कहां दोष है, कौन सा कीटाणु है। ऐसा नहीं कि शरीर में कितने 5-10 लीटर जितना भी खून है सारा का सारा खून निकाल दिया उसकी परीक्षा की, नहीं, थोड़ा सा खून निकालते हैं, सारे शरीर में खून कैसा है उनको पता चल जाता है। या आपको सागर का पानी कैसा है परीक्षा करना है, एक बूंद उठा लीजिए आपको पता चलेगा सागर कैसा है। ठीक उसी तरह से जीव आत्मा जो है वो एक कण है, बूंद के समान है भगवान का। तो जीवात्मा के गुणों की परीक्षा कर ली तो भगवान के गुण क्या है वो समझ जाएंगे। तो इसी तरह से जो भी गुण हम यहां देखते हैं, प्रवृत्ति हमारे अंदर जो है वो मूल रूप से उनमें निवास करती है, इसलिए भगवान को नारायण कहते हैं। और एक अर्थ है ये नारायण शब्द का, नारायण शब्द का तीसरा भी अर्थ है वो ये है, अयण का मतलब ये भी है जानना, नार मतलब समस्त जीव। तो जो व्यक्ति समस्त जीवों को पूरी तरह से जानते हैं वो भी नारायण है। और भी अर्थ है, नर परमात्मा है, परमात्मा के लिए और एक शब्द संस्कृत भाषा में है नर। और आप जानते हैं कि महाविष्णु कहां लेटते हैं, कौन से सागर में, कारण सागर में। तो वहां लेटे हुए हैं, उनके शरीर से ये सब जो पसीना निकलता है वो जल है ये सागर। हर एक ब्रह्मांड के भीतर भी वही महाविष्णु गर्भोदक साय विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, अपने पसीने से आधा ब्रह्मांड भर देते हैं। फिर वो जो सागर हो जाता है जिसको गर्भोदक सागर कहते हैं, फिर उसके ऊपर अनंत शेष लेट जाते हैं और अनंत शेष के ऊपर शयन करते हैं गर्भोदक साय विष्णु। भगवान का पसीना हमारे पसीने की तरह नहीं है, भगवान का पसीना भी दिव्य है। तो उनके शरीर से ये जल निकलता है इसको नार कहते हैं, नर से जो जल निकलता है वो नार। और अयण मतलब शरण, तो वो इस जल के आश्रय हैं, जैसे गर्भोदक सागर है, कारणोदक सागर है, क्षीरोदक सागर है, ये जल इनसे निकलता है उसके आश्रय है, इसलिए इनका नाम नारायण है। या तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि जो जल में आश्रय लेते हैं वो भी नारायण है। ऐसे बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। तो देखिए जो भगवान के भक्त हैं वो कितने सुंदर ढंग से भगवान के अलग अलग नामों का विश्लेषण करके इसमें सुंदर सुंदर अर्थ दे सकते हैं। ये सारे अर्थ जो है एक महान वैष्णव आचार्य ने दिए हैं जिनका नाम है श्रीधर स्वामी। श्रीधर स्वामी श्रीमद् भागवत के मूल टीकाकार रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु श्रीधर स्वामी को बहुत मानते थे और श्रीधर स्वामी की टीका को पढ़ते थे, और जब कोई उनके पास आता था श्रीधर स्वामी की निंदा करता था या श्रीधर स्वामी से बढ़कर कोई चीज कहना चाहता था तो चैतन्य महाप्रभु उनको डांटते थे, कहते थे श्रीधर स्वामी की मर्यादा के बाहर मत जाओ। श्रीधर स्वामी आदि टीकाकार हैं श्रीमद् भागवत के लिए। तो उनकी ये टीका है, नारायण शब्द के विभिन्न अर्थ इस तरह से उन्होंने दिए हैं। उसी तरह से वासुदेव भी जो सब प्राणियों के सब चीजों के उद्गम है, समस्त चीजों के अनंत कोटि ब्रह्मांडों के भी वो आश्रय हैं। ऐसे अलग अलग शब्द अर्थ दिए जा सकते हैं, वासुदेव नारायण इत्यादि। तो ये भी परम क्षेत्रज्ञ हैं। इसी बात को यहां समझाने जा रहे हैं जड़ भरत महाराज रघुगण को कि ये क्षेत्रज्ञ हैं, इनका कोई उद्गम नहीं है, वो सब चीजों के उद्गम है। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान की परिभाषा ये है कि उनका कोई कारण नहीं है लेकिन वो सब चीजों के कारण है। इस विषय के ऊपर श्रीमद् भागवत में भी काफी विस्तार में पहले श्लोक में ज्ञान दिया हुआ है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक के ऊपर लगातार 30 दिन प्रवचन दे रहे थे वृंदावन में, केवल एक श्लोक के ऊपर। और उस एक श्लोक में जो कि जन्माद्यस्यतः इससे शुरुआत होता है, इसके हर एक शब्द के ऊपर उन्होंने बड़े विस्तार में जाके बतलाया कि भगवान मतलब क्या है, परम सत्य मतलब क्या है। तो हमें भी अच्छी तरह से दार्शनिक रूप से जानना चाहिए कि पता है उसको लोग भगवान बोल देते हैं। आजकल हर गली में भगवान हो गए हैं,
हर शहर में, हम दक्षिण भारत से आए तिरुपति से, फिर वहां से सुन रहे थे, अभी आंध्र प्रदेश में एक कल्की आ गए हैं, बहुत प्रसिद्ध हो गए अभी वो कल्की देव। और उनका भी महामंत्र आप जानते हैं क्या है, हरे कल्की 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 हरे हरे। हाँ, ये सच्ची बात है, ये सब चल रहा है। तो थोड़ा कोई भी व्यक्ति आया और थोड़ी बहुत सिद्धि उसने प्रकट कर ली, लोग कहते हैं ये भगवान है, क्योंकि तत्व नहीं जानते लोग। दर्शन फिलोसफी क्या है, भगवान कौन है, भगवान होने का मतलब क्या है, लोग नहीं जानते। थोड़ी विशेष शक्ति प्रदान कर दी किसी, प्रकट कर दी किसी ने, उसको लोग भगवान बना देते हैं। और लोग, वो भी लोग भी इतने दुष्ट होते हैं, कभी इनकार नहीं करते, प्रोत्साहन देते हैं। अगर उनके पास कोई जाता कहता है कि आप भगवान हैं, आप मानते हैं कि आप भगवान हैं, अगर कोई थोड़ा कम दुष्ट होगा तो वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो नहीं भगवान नहीं हूं, लेकिन मेरे लोग जो अनुयायी हैं वो ऐसा कहते हैं। तो फिर आप इनकार क्यों नहीं करते, आप साफ साफ उनको बता क्यों नहीं देते कि आप भगवान नहीं है। प्रभुपाद कितने सख्त थे इस बात के ऊपर। जब उनके शिष्यों ने एक बार उनको भगवान कह के घोषित किया तो इतने गुस्से हो गए कि उनको संसार से बाहर ही निकाल दिया उन्होंने, हालांकि वो तो सन्यासी थे। और जो ज्यादा दुष्ट होते हैं वो तो खुद घोषणा करते हैं कि मैं भगवान हूं। तो ऐसे लोगों से समाज भरा हुआ है, लेकिन जहां सही ज्ञान आ जाएगा वहां ये सारे भ्रांतियां नष्ट हो जाएंगी। आजकल समाज के ऊपर बहुत धोखे चल रहे हैं, बहुत सारे लोग आके चीटिंग कर रहे हैं। कैतव धर्म धर्म पोज्यत कैतव उत्तर परमो निर्मत सराणाम सताम, लेकिन श्रीमद् भागवत में इन धोखेबाजी के धर्मों को बाहर निकाल दिया है। प्रउज्जित, उज्जित मतलब दूर भगा देना, प्रकृष्ट रूप में उज्जित, उसको बहुत तेजी से बलपूर्वक उसको मार देना बाहर। प्रउज्जित धर्म प्रज्जित कैतव, ये कैतव धर्म चीटिंग धर्म सब, लेकिन भागवत धर्म जो है वो असली धर्म है। क्योंकि यहाँ असली क्षेत्रज्ञ क्या है, दो प्रकार के क्षेत्रज्ञ कौन से हैं, जीवात्मा क्या है, भगवान क्या है, दोनों के बीच में संबंध क्या है, ये सब स्पष्ट रूप से बताया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। किसी के कोई प्रश्न टीका टिप्पणी छह नहीं चार। क्षेत्रज्ञ ज्ञान और नियम, ज्ञान मतलब जो चीज जाना जाता है, जो ज्ञान है, और नियम मतलब जो ज्ञान का विषय है। और बाकी दो चीज थी पुरुष और प्रकृति, पुरुषम प्रकृति चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञोरपि, तो पुरुष प्रकृति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और बाकी दो, ठीक है। तो यह है कि एक जीव भगवान से विमुख हो गया है और दूसरा जीव भगवान के धाम में निवास करता है अपनी परिपूर्ण अवस्था में, तो शुरुआत में दोनों का ज्ञान एक समान था, फिर क्या कारण है कि यह दूसरा जीव भगवान से विमुख हो गया और यहां पर आ गया। वैसे प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं, स्वतंत्रता का दुरुपयोग। जीव में लेश मात्र स्वतंत्रता होती है, जिसका जीव स्वतंत्र सदुपयोग करके भगवान के शरण में जा सकता है या दुरुपयोग करके भगवान के शरण को छोड़ सकता है। तो ये स्वेच्छा के ऊपर निर्भर है, और भगवान कभी भी जीव के स्वतंत्रता में दखल अंदाजी नहीं करते हैं, इंटरफियरेंस नहीं करते हैं। तो जीव के पास हमेशा यह स्वतंत्रता रहती है कि भगवान के शरण में रहे या नहीं रहे। इसलिए इच्छा ही सब कुछ है, इच्छा के अलावा हम कुछ और कर ही नहीं सकते, केवल इच्छा कर सकते हैं। अगर उंगली भी उठानी हो हमें, हम खुद नहीं उठा सकते, हम इच्छा करेंगे। फिर अनुमंता है ना, उपद्रष्टा भी प्रवचन में क्या है, तो उपद्रष्टा अनुमंता अनुमंता च, अनुमति देना है उनको, ठीक है उंगली उठ सकती है, तब वो आदेश देंगे हमारे मसल्स को, फिर मसल्स मस्तिष्क में जाएगी ब्रेन, फिर वो यहां ऑर्डर देगी चलो उंगली उठाओ, फिर मसल्स कहेंगे हाँ साहब, फिर उठते हैं। लेकिन अगर भगवान बोलेंगे नहीं तुम्हारे कर्मों में ऐसा नहीं है, तुम्हारे कर्म के अनुसार तुमको पैरालिसिस होना है, मसल नहीं उठेंगे, तो ब्रेन को बोलेगा नहीं तुम नहीं उठ सकते, मसल नहीं उठ सकता, नहीं उठेगा। तो हम केवल इच्छा कर सकते हैं, कुछ नहीं कर, उंगली भी उठा नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमारे अंदर इतना घमंड है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे क्या किया? कुछ नहीं किया, केवल इच्छा किया। इच्छा किया इसलिए भगवान ने हमारी इच्छा पूर्ण की, ठीक है। इच्छा ही परम है। यह कि भगवान जीव को भोग करने के लिए शरीर देते हैं, लेकिन शरीर भोग करता है या आत्मा भोग करता है, आप ही बताइए कौन भोग कर सकता है? भोग करना कौन भोग कर सकता है? एक ये शरीर क्या है, जड़ है या चेतन है? जड़। जड़ वस्तु की कोई भावनाएं होती है? अगर आपसे कोई दो दिन बात नहीं करेगा आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये माइक्रोफोन स्टैंड से दो दिन किसी ने बात नहीं किया इसको बुरा लगेगा? क्यों? इसके अंदर चेतना नहीं है। चेतना नहीं है मतलब भावना नहीं है, भोग करने की प्रवृत्ति नहीं है इसके अंदर, तो कोई जड़ वस्तु भोग नहीं कर सकता, तो शरीर कैसे भोग कर सकता है? शरीर तो भोग्य वस्तु है क्षेत्रज्ञ के लिए, इस आत्मा के लिए, क्षेत्री के लिए यह भोग्य वस्तु है। तो फिर क्या आत्मा भोग करती है? हाँ, भोग करने का प्रयास करता है आत्मा, और ये भोग करने की सारी इच्छाएं इस भौतिक संसार के जगत के स्पर्श में आने के कारण ये सारी इच्छाएं मन में निवास करती है। जैसे थोड़े श्लोक पहले हम पढ़ रहे थे, जड़ भरत समझा रहे हैं कि मन के माध्यम से और शरीर के माध्यम से आत्मा ये संसार का भोग करने का प्रयास करता है। तो मन में ये सारे भोग की इच्छाएं हैं, इच्छाओं का भोग की इच्छाओं का भंडार है मन, और फिर शरीर एक यंत्र है जिसके माध्यम से ये भोग किया जाता है, ठीक है। ये है कि बताया जाता है कि केवल भक्ति के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं, लेकिन ये भी बताया जाता है अलग जगह कि हम पूरी तरह से भगवान को नहीं जान सकते। तो सही बात क्या है? दोनों सही है। भगवान को जानने के लिए एक ही तरीका है और वह है भक्ति। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश चाश्वि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञाता विशते तद अनंतरम। भगवान बताते हैं केवल भक्ति से ही हम उनको जान सकते हैं। भक्त्या तु अनन्या शक्य। लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान विभू हैं, विभू मतलब बहुत बड़े, और हम अणु हैं बहुत छोटे, तो अणु विभू को पूरी तरह से नहीं जान सकता, लेकिन जिस हद तक हमारे लिए संभव है जानने के लिए उस हद तक हम जान सकते हैं, और जानना चाहिए। हमारी बुद्धि इतनी नहीं है कि हम भगवान को पूरी तरह से समझ सके। शुद्ध भक्ति पूरी तरह से भगवान को नहीं समझ सकता है, कोई भी नहीं समझ सकता। जैसे अगर आपको समुद्र का पानी का नापतोल करना, समुद्र कितना बड़ा है, तो आप एक ग्लास, इतना छोटा ग्लास लेकर उसमें से पानी निकालेंगे, संभव है? ग्लास में जितना पानी आएगा उतना भर सकते हैं, लेकिन सारा समुद्र उस ग्लास में आप नहीं भर सकेंगे। उसी तरह से जितनी अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता है, उस हद तक हम भगवान को जान सकते हैं। जैसे आसमान में कई तरह के पक्षी उड़ते हैं, अब देखें कौवे वगैरह हैं, वो ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकते, और जो बड़े पक्षी हैं वो और ज्यादा ऊपर उड़ते हैं, और जो चील वगैरह होते हैं और बहुत ऊंचा उड़ते हैं, गरुड़ तो और भी ज्यादा उड़ते हैं। तो उसी तरह से जैसे कि पक्षियां यथाशक्ति आसमान में अलग अलग लेवल पर उड़ती रहती हैं, वैसे वैसे सारे जीव आत्माओं को यथा साक्षात्कार भगवान को जानते हैं। जैसे भगवान कृपा करते हैं उस जीव के ऊपर, उस हद तक उस तरह से वो जीव भगवान को जान सकता है। भगवान को जानने के लिए भी हम भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं। नास्तिक भी भगवान के ऊपर निर्भर है, भगवान ही उसको वो बुद्धि देते हैं जिससे कि वो नकार सकता है, भगवान नहीं है, भगवान ही उसको अंदर से श्रद्धा देते हैं।